चलिए अब पढ़ेंगे आयतों के साथ साथ। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 31 से 60 तक इस बारे में आएगा। सूरत पीछे से शुरू हो चुकी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा क्या मकसद है? उन्होंने जवाब दिया, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इन पर मिट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरे रब की तरफ से निशान जदा हैं। इन हद से गुजर जाने वालों के लिए कौम लूत की तरफ इशारा, और आज भी जो लोग इस जुर्म का शिकार हैं वो मुसरिफ हैं, हद से बड़े हुए। बस जितने ईमानदार वहां थे हमने इन्हें निकाल लिया, और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया, और वो किसका घर था? लूत अलैहिस्सलाम का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन लूत के साथ कोई मर्द नहीं होगा, और जो मुसलमान हुई थी वो भी इनकी बेटियां ही थी, अपनी बीवी भी पीछे रह गई, उसकी हमदर्दियाँ कौम के साथ थी। तो क्या मेजोरिटी इज अथॉरिटी? हेड काउंट है इस्लाम में, कितनों ने माना, कितनों ने सुना, कितनों ने पढ़ा, कितने आते कितने जाते, ये कोई इस्लाम का मिजाज नहीं है। एक घर था, हक पे था, तो वही काफी था। एक हो, अकेला हो, उसका साथ दीजिए अगर वो हक पे है। सारी दुनिया उसके मुकाबले दूसरी तरफ हो, बातिल पे हो, तो उनके पीछे कभी ना चलिए। और हमने इनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते हैं एक कामिल अलामत छोड़ी, और मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने इसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा, बस इसने अपने बलबूते पर मुंह मोड़ा। यानी फिरौन को खुद को कुछ समझने का जोम था ना, इसीलिए वो बड़ा बना और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना है। नबियों को तो बातें ही सुननी पड़ी, वो मोहम्मद अरबी हो या वो मूसा हो या फिर आगे अब देखेंगे नूह हो या इब्राहिम हो, हर दौर में लोगों की खैराई करने वालों को बातें ही सुननी पड़ी। और बातें करने ले थोड़े से होते हैं, ये भी बता दो, चंद गिनती के लोग होते हैं, अल्लाह वो भी नहीं गवारा करता, इसीलिए उनका तذکرہ करता है। खैर पाने वाले, फैज लेने वाले, उससे अपनी आखिरत संवारने वाले अल्लाह की रहमत से उससे बहुत ज्यादा होते हैं जो कि शर फैलाने वाले होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ख़ज़नाहु वजनूदहू फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मी वहुवा मुलीम। हमने इसे और इसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़ कर दरिया में डाल दिया, वो था ही मलामत के काबिल। देखिए, जो अपने आप को बड़ा बना रहा था ना फिरौन, अल्लाह कहता है वो है इस काबिल। इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि जबकि हमने इन पर खैर और बरकत से खाली आंधी भेजी, मातज़रु मिन शयइन, और वो जिस चीज़ पर गिरती थी से बुसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फ़ायदा उठाओ, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, जिस पर इन्हें इनके देखते देखते तुंदो तेज कड़ाके ने हलाक कर दिया। फमस्तताउ मिन कियाम, बस ना तो वो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी इससे पहले यही हाल हो चुका था, वो भी बड़े नाफरमान थे। आप देखिए, किसी की औलाद में कोई एक नाफरमान हो जाए वो ही बर्दाश्त नहीं होता। चार बच्चे हिदायत पर, एक गुमराह, तो माँ बाप को वो एक सीने पे जलता हुआ अंगारा लगता है। अंबिया कराम के दिल का हाल क्या था कि जिनके लिए कहा गया इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, क्योंकि अंबिया कराम को अपनी कौमों से उससे भी ज्यादा मोहब्बत होती है जो हमें अपने बच्चों से होती है। फिर आगे कायनात की कुछ चीजें, वस्समा बनाई ना हबी दे व इन्ना लमोसियून, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। वलर्द फरश ना हा, और ज़मीन को हमने फर्श बना दिया, पस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं। और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया कि तुम नसीहत करो, पस तुम अल्लाह की तरफ भाग दौड़ यानी रुजू करो। लिखिए, ये है पूरे पारे में। कायनात भी इसी असूल पे चल रही है। ये जब भी कायनात की चीजें पढ़े ना, सूरज चांद सितारे आसमान, ये सब किस चीज का मुंह बोलता सबूत है? फफिरू इलल्लाह, बस अल्लाह की तरफ दौड़ भाग करो। जरा पूछिए, मेरी भाग दौड़ किसकी तरफ है? मेरी जिंदगी का फोकल पॉइंट क्या है? चलिए इन आयतों को पढ़ के तो फिर गौर फिक्र करेंगे, तो उसमें देखिएगा कि मैं किधर जा रही हूँ। यकीनन मैं तुम्हें इसकी तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न ठहराओ, बेशक मैं तुम्हें इसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं, इनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि या तो ये जादूगर है या दीवाना है, क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते गए हैं? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश हैं। तो आप इनसे मुंह फेर लें, आप पर कोई मलामत नहीं, और नसीहत करते रहें, क्योंकि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन। हाईलाइट कर ले आयत 55 को। अगर किसी की नसीहत सुन के आपको गुस्सा आता है तो ये ईमान की कमी की दलील है, क्योंकि नसीहत सिर्फ मोमिन को नफा देती है। और नसीहत करते रहे, यकीनन ये नसीहत ईमानदारों को नफा देगी। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। फेमस आयत है आपके सामने आज 56, ज़ारियात। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। और इबादत की बेहतरीन किस्म, पिछला पारा, इताअत। हर नमाज, रोज़ा, ज़कात आपको मुझे इताअत सिखा रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ। दिन में 5 बार हम नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज हमें क्या देती है? असल सवाल ये है, नमाज से बंदे के अंदर एनर्जी आनी चाहिए, ईमान बढ़ना चाहिए, अल्लाह के सामने खड़ा होने का यकीन आए, बंदा अपने अमाल की इसलाह करे। लेकिन अगर सिर्फ नमाज बराए नमाज हो, इन सलात तनखा अनिल फ़हशाई वल मुनकर नार बने, यानी नमाजी भी है और फ़हश और मुनकर भी नहीं जा रहा, बेकारगी भी नहीं जा रही ज़िंदगी से, तो क्या लिया? इसकी मिसाल समझिए, तीन दोस्त पेट्रोल पंप पे मिले, गैस स्टेशन कह लें या पेट्रोल पंप, एक ही ब्रांड की, सेम ब्रांड न्यू गाड़ियां, सब ने टंकी फुल कराई, चले गए। आप अगले महीने फिर सेम डे पे वहां मुलाकात हुई, सुनाओ भाई क्या हाल है? एक कहता है उसके बाद आज आया हूँ, यानी पूरे महीने में दोबारा पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं महसूस हुई। दूसरा कहता है अच्छा नहीं, मैं तो 15 दिन बाद भी आया था। तीसरा कहता अरे कमाल है भाई, मैं तो हर हफ्ते आया हूँ। यानी एक ने महीने में 1 बार पेट्रोल डलवाया, दूसरे ने 2 बार और तीसरे ने 4 बार। फर्क किस चीज़ का? चलाई, जिसने कम चलाई उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है घर से काम या घर से मस्जिद और बस घर। दूसरा हो सकता है कि शहर में भी कुछ और कामों के लिए फिरता रहा होगा, उसको ज्यादा जरूरत पड़ी। तीसरा बाहर भी जाता होगा, उसकी ज्यादा जरूरियात होंगी। क्या पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल डाला, टंकी फुल हो गई, और अगर कोई जाकर उस गाड़ी को फुल कराकर घर के पोर्च में बंद कर दे तो उसके 1 माह बाद भी टंकी फुल थी। हम अपनी नमाजों को लें, मस्जिद को ले लीजिए, कि वहाँ जाकर हम अपने अंदर ईमान का पेट्रोल, ईमान की गैस और एनर्जी डालते हैं। अब जब हम एक नमाज पढ़ के फुल हो जाते हैं ना, फजर की नमाज ले लीजिए, सूरह फातिहा में 2 दफ़ा फर्जों में, फिर 2 सुन्नतों के कर लें, 4 दफ़ा हम इकरार करते हैं या कना बुदो या कना स्तीन, अंदर एक हलचल शुरू हो जाती है। अच्छा अल्लाह, मैं तेरी बंदी, तू मेरा मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते और पूरी सूरह फातिहा में अल्लाह का तारुफ देती। हो सकता है इमाम साहब ने उसमें यही आयतें पढ़ दी, फ़फ़िरू इलल्लाह, सूरह ज़ारियात की आयतें, वमा खलक़तुल जिन्ना पढ़ दी। अब आपको समझ भी आ रही है, आप तो यहाँ तक भर के आएंगे ईमान से, सुबह उठते ही आपकी सुबह इतनी प्यारी होगी कि आप भरे में। अब जब अंदर ही ईमान आता है ना, तो फिर जैसे गाड़ी में पेट्रोल आए तो कहते हैं अब छोड़ दो मुझे, मुझे चलना है, फिर आप फ़फ़िरू इलल्लाह करते हैं। जो एनर्जी और ताकत हमें इबादत से मिलती है, उम्रों से मिलती है, हज से मिलती है, तरावियों से मिलती है, उसको फिर किधर यूटिलाइज करो? फ़फ़िरू इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करो। अब जब भाग दौड़ करेंगे तो पेट्रोल कम होगा ना, फजर के वक्त नमाज पढ़ी का पीछे हो जाओ, बस मैं कुछ करूंगा। अब जब जोहर के करीब आए तो आधी टंकी कम हो चुकी थी, जल गई गैस। अब क्या, फौरन गाड़ी को पेट्रोल पंप पे ले जाओ, मस्जिद के बाहर खड़े करो, जोहर में जाकर फिर टंकी फुल कराओ। आगे आप समझ गए, ये नहीं हो सकता कि 5 वक्त की नमाज भी है और फ़फ़िरू इलल्लाह नहीं। शौरी नमाज है तो फिर तो बिल्कुल होगा। तो जितनी आप इबादत करते हैं, अभी हम पारा पढ़ रहे हैं ना, अभी 27वां पारा है और मेरा दिमाग 30वें पारे के बाद पे चल रहा है कि उसके अगले दिन क्या होना है। लेकिन बात यह है कि ये नमाजें अलग और सुस्तियों वाली जिंदगी अलग। चलिए मैं रियाल की मिसाल देती हूँ। अब आप 1,000 रियाल जेब में रख कर फिर के भी आ जाएं, आपके पास 1,000 रियाल था, आपने शायद टैक्सी 20 रियाल लेती होगी, टैक्सी नहीं ली, चलती नहीं, चलती नहीं, आपको पता ही नहीं मेरे पास 1,000 रियाल है, कुछ जरूरत की चीज वहां मौजूद थी जिसकी अशद जरूरत है, नहीं ली। रात को वो 1,000 का नोट भी संभाल के ले आए और कोई काम ना करें तो बेकार की है। बस ये जिंदगी जाया हो रही है। अब जितना भागेंगे ना उतने फ्रेश रहेंगे, ये मैं आपको पक्का बता दूं। जैसे रोज सफाई करने वाली खादिमात जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, और हमें अगर एक इतवार या जुम्मा करनी पड़ जाए सफाई तो हमारी कमर दोरी हो जाती है। वो रोज करती हैं, फ्रेश हैं, कभी कभार करती हैं, हमें मुश्किल लगती है चीज़। तो ज्यादा कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए और ज्यादा कीजिए। अब आगे देखिए कि अल्लाह ताला ये बात हमें और किस तरह समझाते हैं। माँ उरी दो मिन हूँ मेरे रिस्क, ना मैं इनसे रोजी चाहता हूँ और ना ये मेरी चाहत है कि ये मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला तो खुद ही सबका रोजी रसान, तवानाई वाला और जोरावर है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है इन्हें भी इनके साथियों के हिस्से के मिसल हिस्सा मिलेगा, लिहाजा वो मुझसे जल्दी तलब ना करें। बस खराबी है मुनकिरों को इनके इस दिन की जिसका वादा दिए जाते हैं। आइए अब तदब्बुर करते हैं आयत 31 से ऑनवर्ड। आयात पर अमल, तेज हवा चले तो ये दुआ करें, क्योंकि जो पहली आयत थी ना ये हवाओं की किस्म थी कि हवाएं तेजी से चलती हैं। तो क्या पता चला, दुआ आप लोग याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन खैरी मा उर्सिलत बिही व आऊज़ु बिका मिन शर्री मा उर्सिलत बिही। यदि आंधी आए, थंडर स्टॉर्म हो, या आपके लिए इवन सुनामी भी आ जाए, या कोई भी ऐसा समंदरी तूफान आए, या यहाँ रेत का तूफान आता होगा, तो ये दुआ याद कीजिए। फिर सोते वक्त ये दुआ मांगिए, और ये दुआ नहीं है, ये आपका अल्लाह के साथ एक बड़ा प्यारा सा मुकालमा है। अल्लाहुम्मा अस्लम तो नफसी इलैक, वफवस तो अमरी इलैक, ववज्जह तो वजही इलैक, वलजा तो जहरी इलैक, रहबतन व रहबतन इलैक, ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। आमंतु बिकिताबी कल्लज़ी अनज़लता व बि नबी कल्लज़ी अरसलता। हसनुल मुस्लिम बड़ी खूबसूरत दुआओं की किताब है, आप उसमें भी इसको खोलिए, इसका तर्जुमा पढ़िए और अपने सरहाने के पास रख लें उस बुक को, या इस दुआ को लेके सोते वक्त ज़रा इसको उर्दू तर्जुमे से पढ़े, आपको ऐसे लगेगा कि मैं गहरी नहीं सो, जैसे बच्चा सोता है ना ऐसे ही है, झूल झूल के वहीं बैठा बैठा सो जाता है वो बेबी। इस तरह होले भोले हल्के फुल्के होकर सोएंगे आप इंशाल्लाह। इसी तरह किसी को नसीहत करें तो खूबसूरत और दिलकश अंदाज अपनाइए। कुरान से रहनुमाई, अपनी ताकत और माल से धोखा न खाएं वरना हिदायत से महरूम हो जाएंगे। आप एक हैं और नेक हैं तो अंधेरे में चिराग की मानिंद हजारों पर भारी हैं। इस जुमले को लिख लें, आप चिराग बनना चाहती हैं अंधेरों में, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए तो लोगों की दुखी जिंदगियों के बीच में हिदायत के चिराग बनिए, जैसे सिराज मुनीरा थे। एक हैं और नेक हैं तो अंधेरे में चमकते हुए चिराग हैं। अल्लाह आपको मुझे ऐसा बना दे। हर मामले में अल्लाह की मुकम्मल इताअत करके बंदगी का हक अदा करना। गौर व फिक्र, कुरान में पिछली कौमों की तबाही का जिक्र करते हुए अल्लाह ने हमें अपने आमाल दुरुस्त करने का मौका दिया। कुरान पाक के किस्सों से बस वही नसीहत लेते हैं जो आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के अजाब से डरते हैं। अल्लाह की तरफ रजू करने में कामयाबी, खुशबख्ती, अमन और राहत है। दावते हक में सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है, झगड़ने वालों से झगड़ना नहीं। ये पैगाम था जी सूरत ज़ारियात का। आगे है सूरत तूर। तूर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाते से आपको मालूम है कि पहाड़ जहाँ अल्लाह ताला ने बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी थी, 49 आयतें हैं। रिदम है इनमें क्या, इन सारी सूरतों का आप सुनिए फ्लो में, अबू बकर शात्री की आवाज़ में सुन लें, साद अल गामदी की आवाज़ में सुन लें, अदरीस अबकर को सुन लें, या जिसकी भी आपको अच्छी लगे, हर एक सोने पे सुहागा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तूर, वकिताबे मस्तूर, फी रक़्क़िन मंशूर, वल बैतिल मामूर। कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की जो झिल्ली के खुले हुए वरक में है और आबाद घर की। ये बैतुल मामूर के, अब कभी उम्र करने या मक्का जाने का इत्तफाक हुआ तो आसमान पे देखिएगा, तो अगर आपको हरम में जगह मिल जाए ना अंदर मताफ में, तो बैतुल्लाह के ऊपर बिल्कुल देखिएगा। हमें नजर तो नहीं आएगा लेकिन हमारा ईमान है, क्योंकि नबी ने फरमाया किस बैतुल्लाह के बिल्कुल सीध में ऊपर जाएं तो आसमान पे एक और घर है, उसका नाम बैतुल मामूर है। मामूर मीन भरा हुआ, मफूल का वजन है, उम्र लफ्ज है इसके अंदर, यानी फरिश्तों से भरा हुआ घर। हम सब यहाँ के तवाफ के लिए तरस रहे होते हैं, फरिश्ते वहां तवाफ करते हैं, उसी की कसम है। बस सकफिल मरफू, और आबाद घर की, और ऊंची छत की, और भड़काए हुए समंदर की, और इतनी कसमों के बाद जवाब सुनिए, इन्ना अज़ाब रब्बिकल वाक़े मा लहू मिन दाफ़े। यकीनन आपके रब का अज़ाब वाक़े होकर रहने वाला है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। याद रखिए, जो बैतुल मामूर है ना, मेराज के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम को दिखाया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इससे टेक लगाकर बैठे हुए थे। तो बैतुल्ला जमीन पर इंसानों के लिए, और बैतुल मामूर आसमानों पर फरिश्तों के लिए। कैसा होगा, दिल चाहता है कभी दुनिया के साथ साथ आसमानों को भी देखें, लेकिन वो हम दुनिया में रहते हुए तो नहीं देख सकते। दुआ करिए ईमान की मौत आए और हमारी रूह को नेक फरिश्ते लेकर जाएं, और हम फिर इन जगहों को देखें। आसमानों पे भी बहुत खूबसूरती हैं ज़मीन की तरह। तो बैतुल्लाह का शौक रखने वाले अपनी रूहों को अल्लाह की याद से सरशार करें, अल्लाह करेगा तो अल्लाह हमें आसमानों पे बुलाएगा। कब? जब हमारी रूह जिस्म से जुदा हो जाएगी। क़यामत का मंजर ज़रा फील कीजिए, और ये सूरत तूर जो ना, इसको विजुलाइज करें, फील करें। यौम तमूरु सम्माउ मौरा व तसीरु अलजिबालु सईरा फवैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। इस दिन आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे। इस दिन झुटलाने वालों की बुरी खराबी है, जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद रहे हैं, जिस दिन वो धक्के देकर आतिशे जहन्नुम की तरफ लाए जाएंगे। धक्का पड़ना जो होता है ना, बंदे को बड़ा ही बुरा लगता है। एक तो जिस्मानी तकलीफ हो, उससे ज्यादा रूहानी और जहनी इस्तराब है कि किसी ने मुझे धक्का दिया। कभी रश की वजह से धक्का पड़े तो कितना गुस्सा आता है, और उस दिन इन लोगों को धक्के दिए जाएंगे कि चलो आपकी तरफ भागो, और क्या कहा जाएगा, हाजिहि नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज्जिबून, यही वो आतिशे दोज़िख़ है जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ, क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं हो? जाओ दोजख में, अब तुम्हारा सब्र करना और न करना तुम्हारे लिए यकसा है। इस लौखा फसबिरु औ ला तसबिरु सवाउन अलैकुम। अब क्या फायदा, इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, तुम्हें फक तुम्हारे किए का बदल दिया जाएगा, यानी अब तो वही मिलेगा जो करके आए हो। व्हाट यू डिजर्व, बट यू हैव अर्न्ड, जो तुमने पीछे से ऑर्डर किया था, यहाँ वो तुम्हारे लिए पैकेज मौजूद है। इसके बरक्स, फ़फ़िरु इलल्लाह वाले, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों का क्या अंजाम, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून। ऐसे लगता है कि कोई रिजॉर्ट है और वहां इनकी खातिरें हो रही हैं, कोई शाही महल है, और वहाँ ख्वान लगे हुए हैं, और वहाँ खूबसूरती हैं। ज़रा सा तसव्वुर में ला कर सुनिए, हालांकि फ़ला तआलमु नफ्सु मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। ना आप और मैं जन्नत का तसव्वुर कर सकते हैं, ना हमारी आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना दिल पे इसका कोई ख्याल गुजरा, और ना यकीन आए। तो सूरह सजदा की आयत पढ़ लीजिए, फ़ला तआलमु नफ्सु मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। लेकिन हम अपनी इस्तेआत के मुताबिक थोड़ा सा इमेजिनेट तो कर सकते हैं। सोचिए, यकीनन परहेजगार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं जो इन्हें इनके रब ने दे रखी हैं, इस पर खुश खुश हैं, और इनके परवरदिगार ने इन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा लिया। तुम मजे से खाते पीते रहो इन अमाल के बदले जो तुम करते थे, बराबर बिछे हुए शानदार तख्ते पर तकिया लगाए हुए, और हमने इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से करा दिए हैं। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बीईमान, पहले बड़ों का तस्करा था, औलादों का। जरा सुनिए अपनी नस्लों के लिए और दुआ करिए, और अल्लाह हम सब की नस्लों को हमसे ज्यादा नेकियों में तौफीक दे, उनको फ़फ़िरु इलल्लाह में डाल दे, और उनको आगे से आगे बढ़ाता रहे नेकियों में। और तैयारी कोशिश हमने करनी है, ये हमारा जिम्मा है, ये हमारा फर्ज है। जैसे हमें बच्चों की जिस्मानी सेहत की फिक्र होती है ना, इस तरह उनकी कल्बी रूहानी और जहनी सेहत की फिक्र कीजिए। जितना अपने बच्चों के जिस्म की खुराक की फिक्र है उतना उनकी रूह की खुराक की फिक्र कीजिए। मस्जिद में नमाज की अजान से पहले अगर कोई जवान बच्चा पहुंच जाए, वल्लाही हजरत यूसुफ जैसे हालात का भी शिकार हो जाए, अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेगा। इससे ज्यादा और क्या कहूँ। और अगर बच्चों को नफ्स परस्त बना के सिर्फ उनको जीना पराए जीना रखा, तो हो सकता है हरम की हदूद में रहने वाले बच्चे भी बिगड़ जाएं। तो अपने बच्चों पे एक नजर रखिए ताकि कल उनकी नेकियां देखकर आप खुश हों। कैसे, सुनिएगा। और चलो कि ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, हम इनकी औलाद को इन तक पहुंचा देंगे। यानी जन्नत में जुदाइयां नहीं है, शर्त एक है कि बच्चा भी जन्नत में पहुंच गया। अपग्रेड अल्लाह करा देगा। देखिए ना, जहाज में पहुंचे हुए हैं तभी तो किसी को इकोनॉमी से निकाल कर कोई फर्स्ट में डालेगा या बिजनेस में ले जाएगा कि चलो भाई जाओ, वो आगे इनके बैठे हुए, अपने इनको भी बुला लो। तो जब बच्चा पहुंचा ही कोई नहीं। और ऑपोजिट भी है, बच्चे बैठे हुए माशाल्लाह फर्स्ट क्लास नहीं बिजनेस क्लास में लेटने वाली सीट पे, तो माँ बाप वो पूछल में भी नहीं है, यानी पीछे जहाज की टेल में भी नहीं बैठे, तो कैसे बच्चा बुलाएगा? जहाज में से नीचे से बुलाओ। कुछ एबिलिटी तो हो, कुछ खूबी तो हो। आप बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, लेकिन पहले अपना अकीदा भी तो आप देखें कि आप में शिर्क तो नहीं, आप जन्नत की फ्लाइट को डिजर्व भी करते हैं कि नहीं। हाँ, जो ज्यादा अच्छी जगह पे होगा ना उधर बुलाया जाएगा। ये वाक्य आप पीछे भी सुन चुके हैं, आप तर्जमे को इंजॉय कीजिए। और इनके अमल से हम कुछ कम ना करेंगे। अब आगे अगला जुमला हाईलाइट कर लीजिए। कुल्लु इमरिम बिमा कसबा रहीन, हर शख्स अपने आमाल का गिरवी है। हमारी आंखें गिरवी फ्लैच पे, कान नाक हाथ सब कुछ गिरवी है। देते जाओ नेक अमल और उनको छुड़ाते जाओ जहन्नम से। हम इनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे। खुश तबई के साथ एक दूसरे से जामे शराब छीना छपटी करेंगे, जिस शराब के सुरूर में ना तो बेहुदा गोई होगी ना गुना। और इनके इर्द गिर्द इनके नौ उम्र गुलाम फिर रहे होंगे, वो या मोती थे जो ढके रखे थे। कानम लूलुम मखनून यतसालून। अब जरा जन्नत में देखिए कि दुनिया की बातें कैसे याद करेंगे लोग। और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे, बस अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तुंदो तेज गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया। वजह क्या है? इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदूहू इन्नहु हुवल बर्रु रहीम। हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। बड़े यूनिक नाम है अल्लाह का अलबर। ये जो लफ्ज़ है ना अलबर्रु, सुनिए इसको अस्माउल हुस्ना में से। बिर का लफ्ज़ नेकियों के लिए आता है, वही लफ्ज़ है ये भी। तो क्या पता चला कि उनका तारुफ अल्लाह से दुनिया में ही था। फज़क्किर फ़मान तबी नेमती रब्बी कभी कहा मजनून। यहाँ बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टाइटल देते थे ना मक्का वाले, उसमें दो काहिन और मजनून भी था। यू बिकम क्रेजी, ये तो काहिन है, ये पता नहीं कौन है। तो अल्लाह ताला कहते हैं तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन है ना दीवाने। क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है, हम इस पर जमाने के हवादिस का इंतजार कर रहे हैं। कह दीजिए तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूँ। क्या इनकी अक्लें इन्हें यही सिखाती हैं, या ये लोग हैं ही सरकश? अम यकूलू न तकब्बलहू, क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने कुरान को खुद घड़ लिए? देखिए इल्जाम पे इल्जाम ऐसे बोछाड़ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फरमाया वाक़ा ये है कि वो ईमान नहीं लाते। अच्छा, अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक ही बात ये भी तो ले आए। ये फोर्थ पॉइंट है कुरान का, जहाँ चैलेंज किया गया कि इस कुरान जैसा कुरान ले आओ, एक आयत 10 आयतें या फिर कुछ और। क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, या खुद पैदा करने वाले हैं? क्या उन्होंने ही आसमान और जमीन को पैदा किया है, बल्कि ये यकीन न करने वाले लोग हैं? या क्या इनके पास तेरे रब के खजाने हैं, या इन खजानों के ये दारोगा हैं? यानी हैरत है बस इनके हाल पे, ये मुराद है इधर। अम लहुम सुल्लम, या क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सुनते हैं? अगर ऐसा तो इनका सुनने वाला कोई रोशन दलील पेश करे। क्या अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ लड़के हैं? नाउज़ुबिल्लाह। क्या तुम इनसे कोई उजरत तलब करते हो कि ये इसके तावान से बोझल हो रहे हैं? बोली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नबी ने कभी अपनी इन खिदमात के नतीजे में कोई उजरत नहीं मांगी थी, कोई पे नहीं मांगी थी, कोई इनाम नहीं मांगा था, कोई तोहफा नहीं मांगा था, कोई तारीफ नहीं मांगी थी, कोई क्रेडिट नहीं लिया था। फिर भी लोगों को नहीं समझ आता कि इनका फिर मकसद क्या है। देखिए ना, कोई जाती फायदा हो तो बंदा कह सकता है इनका अपना फायदा है। अपना फायदा यही है कि ये कलाम दूसरों की जिंदगियों में रोशनी डाल दे और वो हमारी और अपनी निजात का जरिया बन जाए। अंबिया कराम इतने ही बेगरस होते थे, इतने ही बेलौस होते थे, और इसीलिए उनकी बात में तासीर भी थी। क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं तो यकीन कर लें कि फरेब खुर्दा तो काफिर ही हैं? क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला इनके शिर्क से पाक है। अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें तब भी कह दें कि ये तह बतह बादल है, फजरहुम, तो आप इन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से साबिका पड़े जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इन्हें इनका मकर कुछ काम न देगा और न वो मदद किए जाएंगे। बेशक जालिमों के लिए इसके अलावा और भी अजाब हैं, लेकिन इन लोगों में से अक्सर बेइल्म हैं। हाईलाइट करिए बेइल्म, इल्म लीजिए। अब कुरान के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं ना, आपको बार बार रग़बत मिलेगी कि दौरे कुरान को काफी ना समझो। अभी तो तुमने सतह के ऊपर से हल्का हल्का पानी महसूस किया है। देखिए परिंदा जब समंदर के ऊपर या दरियाओं में पानी पे बैठता है, कितना को पानी उसको आता होगा नीचे। अभी तुमने इसमें डूब के देखना है कि मछली को कितना मजा आता है पानी में। अभी डाइव डालनी है, अभी डाइव करना है। ये दौरे कुरान का सफर इतना फास्ट, इतना तेज होता है, ये तेज बारिश की तरह आता है। अभी दिल भीगे हुए, अभी दिल नरम है, फैसले कर लीजिए, दुआ कर लीजिए। ये जगह ना दुआएं कबूल होने की होती हैं। जहाँ कोई खैर का काम हो, नेकी का काम हो, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, फरिश्ते होते हैं, दुआ कर लें अल्लाह मुझे महरूम ना रखना। इस मुख्तसर से सफर को वो पायदान और वो सीढ़ी बना दे जो मुझे टॉप पर ले जाकर इस कुरान पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आपको मेरी बात का जरा सा भी एतमाद है, ये नुकसान का सौदा नहीं होगा। लाखों लोगों की गवाहियां मौजूद हैं जिन्होंने कुरान को सीखा और उनकी जिंदगियों में हिदायत के चिराग आए। मैं अगर सारा दिन पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम करती रहूँ ना, तो ये फोन है। जिनको खैर मिलती है वो अपनी शेयरिंग्स करते हैं, रोते हैं, जिंदगी में ये हुआ ये हुआ, जो दौरे कुरान का फीडबैक आता है, जो कोर्सेज का आता है, क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, उनको खैर मिली। फूट फूट के औरतें रोती हैं, सिस्टर्स रोती हैं, बच्चियां रोती हैं कि ये क्या कुरान हमारे हाथ लग गया है, हमने तो कभी इस तरह पढ़ा ही नहीं था। हम तो समझते थे एक मुश्किल सी किताब है जिसको रमजान में एक एक पारा नहीं, पांच पांच पारे रोज पढ़ने हैं। आप में से हो सकता है वो सिस्टर जो यहाँ रोज आ रही हैं, उन्होंने नहीं पांच पारे पढ़े रोज, तो कोई फर्क नहीं। इधर कितने कुरान है, तर्जमा भी है, इसमें गौर व फिक्र है, तदब्बुर है, फिर इसमें आप देखिए मोहम्मद अरबी है, इसके अंदर अखलाक नबवी है, इस पांच छह लेयर तो इसमें भी कुरान की लगती है। एक रात का पारा तरावी का पढ़ ले, दैट्स इट, इसके अंदर डूबे। तो अल्लाह ताला आपसे मुझसे ये कबूल करे, वस्बिर लि हुक्मि रब्बिक, तो अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम ले, बेशक तुम्हारी निगाहों के सामने है। सुबह को जब तू उठे अपने रब की पाकी और हम बयान कर, और रात को भी इसकी तस्बीह पढ़, और सितारों के डूबते वक्त भी। इसमें सुबह शाम की दुआओं का भी और नमाजों का भी इशारा है। तो ये खूबसूरत आयतों पे सूरत पूरी हो रही, आइए तदब्बुर करते हैं आयत वन से लेके एंड तक। ये दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल हुदा व तुका वल अफाफ वल गिना। जो दुआ आपकी जुबान पे रहे ना, किसी किताब में देखे भाले बगैर, वो ये दुआ हो। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते, अगर आप किरदार को बुलंद करना चाहते, हिदायत, तकवा, पाक दामनी और गिना, चार वो चीज़ें हैं जो एक बंदे की पर्सनैलिटी को चमका देती हैं। इसी तरह अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह से दुआएं करने वाले जन्नत में जाएंगे, इसमें शामिल होने की कोशिश करनी है। अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करें कि कल इनके साथ जन्नत के ऊंचे दर्जों में जगह पा सकें। और यहाँ एक दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चे मेरी वजह से नहीं, मैं उनकी वजह से जन्नत के बुलंद दर्जों पे जाऊं। मजा तो तब है ना, कोई फोहड़ औलादे थोड़ी छोड़ के जानी है, नकम्मी बेकार और सुस्तियों की मारी औलादे छोड़ के जानी है, घंटों गैजेट्स के सामने बैठी हुई औलादे छोड़ के जानी है। क्या दुनिया को देके जाएंगे, कभी सोचिए। तो अल्लाह करे कि ये कुरान हमारे दिलों पे उतर जाए, कुरान की रहनुमाई, नेकी के कामों में अपने वालिदैन की मदद करें ताकि जन्नत में आपको इनके साथ बुलंद मर्तबे में मिला दिया जाए। दुनिया के घरों में अल्लाह ताला से खूब डरने वाले और खौफ रखने वाले बनकर रहें, कि ये जन्नतियों की सिफत है। नमाजों की सही वक्त पर अदायगी और तस्बीहात को अपना मामूल बनाना है। गौर व फिक्र, कामयाबी और निजात इबादत में इखलास पैदा करने पर मिलती है, खाली मांगने और तलब करने से नहीं। बैतुल मामूर में हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और जब इससे निकल जाते हैं तो दोबारा कभी दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। इस बात से आपको मुझे क्या सीखना है कि ये भी नसीब की बातें होती हैं, कि किसी को मौका ना मिले और आपको मौका मिल जाए। जो दुनिया में अजाब इलाही से खौफ नहीं करता, वो आखिरत में इससे बच नहीं सकता। आखिरत में कामयाबी का एक नुस्खा, अपने घर में डर कर रहना घर वालों की हक तलफी और तन्हाई के गुनाहों से। हम सब अपने दिल का जायजा लें कि क्या हम अपने तन्हाई के औकात में अल्लाह से डर रहे होते हैं। जब कोई ना हमें देख रहा हो उस वक्त दिल का क्या हाल होता है।